जी सवाल फरमाइएगा जी, ये ऑन कर दिया मैं। जी फरमाइए।
सर सूरह मुजादला की आयत नंबर 7 है, उसमें ये ट्रांसलेशन है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जहां तुम दो हो वहां पे मैं तीसरा हूं, तो सर इसको प्लीज एक्सप्लेन करेंगे, अल्लाह ताला ने तीसरा ही क्यों कहा,
दूसरा क्यों नहीं कहा? असल में देखें ये वे ऑफ स्पीच है, इट इज ए वे टू से समथिंग। बताया ये गया, अगर आप देखे ना, अगर अल्लाह कहते जहां तुम एक हो वहां मैं दो हूं, तो हर बंदा समझता कि मेरे साथ कोई दूसरा अल्लाह है। और करे अल्लाह ये बता रहा है मैं कलेक्टिवली सबके साथ हूं, जहां तुम दो हो वहां तीसरा मैं हूं, जहां तुम तीन हो वहां चौथा मैं हूं। ये आगे फ्रेज यूं बनेगी ना, यानी कि अल्लाह रब्बे करीम हर बंदे के साथ हैं, लेकिन वो इस तरह से साथ हैं कि जहां दो बंदे बात कर रहे हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन तीसरा अल्लाह भी उनके साथ शामिल है। मसलन मैं और आप बात कर रहे हैं, अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो हम दोनों को विटनेस कर रहा है अल्लाह, जो भी बात कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं बुरी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि फसाद कर रहे हैं, या प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, इल्मो आगही की बात कर रहे हैं, ये जहालत की कोई गप मार रहे हैं, ठीक है। हर सूरत में अल्लाह साथ है, दोनों को वॉच कर रहा है। अगर ये एहसास हर बंदे को हो और करें क्या कि भाई जब भी हम बात कर रहे हो तो हमें ये एहसास हो कि भाई हम दोनों का गवाह अल्लाह है, तो हम दोनों क्या कहेंगे, वही कुछ कहेंगे ना जो अल्लाह सुनना चाहता है। जब हमें पता होगा कि हम देखे ना कोई बात कर रहे हैं और हमारे जहन में है कि भाई इसका गवाह अल्लाह बन रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है, वो साथ है मेरे, हम दोनों आपस में साथ नहीं है, अल्लाह भी साथ है उसको, आप जब अल्लाह वास्ते महसूस करते हुए करेंगे तो क्या बेहतर नहीं होगा, उसकी क्वालिटी डिफरेंट हो जाएगी
जी।
हाँ या नहीं
जी सर?
जी प्लीज
जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू सर। एक और सवाल है
जी, इरशाद
सर, हमने नमाज को एज अ रिचुअल बना लिया है, हम जब भी जिम में जाते हैं तो हमारे दर्द भी हमें याद आ जाते हैं, या हमारा सहन अल्लाह ताला की तरफ नहीं होता है, तो सर इस चीज को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्यों या वो एहसास हमारे अंदर किस तरह आ सकता है?
माशाल्लाह जी, ये बड़ा आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये सिर्फ माइंड सेट की बात है। क्या है? माइंड सेट की बात है कि जब हम नमाज पढ़ें तो नमाज के दौरान हमारी तवज्जो में ये बात मौजूद हो क्या कि हम अल्लाह के हजूर हाजिर हैं, ये एक माइंडसेट है। अब चूंकि आपने सवाल का अमली पहलू पूछा कि जी इतने ख्याल आते हैं तो कभी अपनी पैर दुख रहे हैं तो ये वो सारा कुछ, इससे कैसे बचा जाए, इसका तरीका जो हजूर मुर्शिद करीम फरमाते हैं वो बड़ा मुजर्रब इलाज है। क्या? जब आप वजू करके मुसल्ला बिछा लें और ये बड़े एहतमाम से आप पहले तो तसल्ली से तहम्मल से बैठ जाएं और आंखें बंद करके ये तसव्वुर जमाएं कि मैं अल्लाह के सामने हाजिर हूं, मैं अल्लाह के सामने मौजूद हूँ। आंखें बंद करके आप ये तस्वुर जमाएं कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह के देखने को महसूस करें। ख्वातीन में ये हिस वैसे भी ज्यादा होती है, कोई देख रहा हो ना उन्हें फौरन पता चल जाता है कि वो मुझे ताड़ रहा है। तो जब आप ये महसूस करेंगे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो आप इस देखने में एक चीज का इजाफा कर लें, अल्लाह मुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाली मोहब्बत और शफकत से देख रहा है। अब माँ बच्चे को देख रही हो तो बच्चा इस तवज्जो को पाकर कैसे खिल रहा होता है, वो मस्ती में आ जाता है, वो शोखी में आ जाता है, वो खेलता है, हाँ या नहीं। जब हमें ये महसूस होगा कि मैं अल्लाह के सामने हाजिर हूँ और अल्लाह मेरी तरफ 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत ममता और शफकत के साथ मतवज्जो है, तो आपकी रूह कैसे सरशार नहीं होगी। जब आपकी रूह इस तरह सरशार होगी तो उसके बाद आप उठें, 5 मिनट 10 मिनट इस कैफियत में रहें, उसके बाद उठें और जब आप नियत करें तो कानों की लो को हाथ लगाते हुए आप ये जुमला जहन में दोहराएं कि बारे इलाह मैं तेरे हजूर हाजिर हूं, तू मेरी हाजिरी कबूल फरमा ले। उसके बाद आप जो कुछ भी मुंह से अदा कर रहे हैं उसके मफहूम पे तवज्जो दें, बस ये एहसास जहन में रखें और जो कुछ आप मुंह से अदा कर रहे हैं उसके मफहूम पे तवज्जो दें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका, अब ये सबा अना का सब काम तो तेरे ही लिए हैं, व बिहम्दिका और मैं उसको बहुत सराहती हूँ, व तबारक इस्मुका और तेरा नाम तो बड़ा ही बरकतों वाला है। जरा इस जज्बे से इस तरह से ट्रांसलेशन जहन में उभरने तो दें, दिलचस्पी पैदा हो जाएगी कि नहीं। सुन के कैसा लग रहा है, महसूस होना शुरू हो गया कि नहीं। जब हम देखिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो महसूसात तक कैसे उतरेगी बात। जब तक हमारे एहसासात इन्वॉल्व नहीं होंगे, जाहिर है दुनिया के ख्यालात आएंगे, आने दीजिए, वो गुजर जाएंगे, उनको नोट करें और उसके बाद अपना ध्यान जो है वही रखें मरकजी नुक्ते पे कि बस अल्लाह मुझे देख रहा है, बस ठीक है देख रहा है तो क्या करे। जाहिर है मैं हर काम बेहतर तरह से परफॉर्म करूंगा ना, जब एक बंदा पता है उसे कि भी अल्लाह मुझे निगरानी कर रहा है, मेरी तरफ मतवज्जो है। अगर मैं शोखी पे उतरूंगा तो जाहिर है कोई ज्यादा ही शोखी करूंगा कि यार देखो मैं माँ मेरी देख रही है लिहाजा मैं मस्ती कर रहा हूँ। बच्चों में होता है ना, तो आप ये अपने आप को अल्लाह का बच्चा तो माने, फिर देखें आपको मजा आता है कि नहीं आता। ठीक हो गया,
ठीक हो गया।
अल्लाह आपको खुश रखे जी। आपने सवाल ही इतना अच्छा पूछा, मेरा जी चाहा कि मैं आपको जरा शेर हासिल किस्म की बात पेश करूं जी। जी जनाब, और कोई सवाल? जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा सवाल है कि इज्तिमाईयत के बारे में अल्लाह पाक बहुत तस्करा करते हैं, ये क्यों? और दूसरा सवाल है कि अल्लाह ये भी बहुत पसंद करता है कि खुश रहा करो, इसको समझना चाह रही थी कि खुशी ही क्यों, मतलब खुश रहना ये तो मतलब हो रहा है कि खुशी पॉजिटिव है और अल्लाह की पसंद का है, खुशी
ठीक हो
ही क्यों?
गया। एक बात सुन ले, आज आपने दो चीजें पूछी, एक कि इज्तमाइयत क्यों और दूसरा खुशी क्यों, ठीक है ना? इज्तमाइयत से क्या मुराद है? इज्तमाइयत से मुराद है सबके लिए, अल्लाह सबके लिए करता है। सूरज की रोशनी सिर्फ सूरज के लिए नहीं है, चांद की चांदनी सिर्फ चांद के लिए, इसी तरह हमारा एटीट्यूड सबके लिए होना चाहिए। लफ्ज है सबके लिए। अब यहां बारीकी है, हम कोई खुदा नहीं है कि हम सबके लिए करें, हमें सबके साथ गुजारा करना है, हमें ऐसा रवैया रखना है जिसमें किसी के लिए बुराई ना हो, ऐसा रवैया ऐसा एटीट्यूड रखना है कि किसी के लिए हम एजियत का बायस ना बने। हमारे अंदर अल्लाह ने जो सलाहियतें रखी हैं वो उनका इस्तेमाल हमने करना है पहले खुद अपनी ग्रोथ के लिए, साथ में उस ग्रोथ का फायदा दूसरों को। अगर आप एक माँ हैं और आपके अंदर अल्लाह की दी हुई सलाहियतों के तहत आप अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, उनकी परदाख्त कर रही हैं, उनकी लुक आफ्टर कर रही हैं, तो ये क्या हो रहा है? आप अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दूसरों के लिए हो गया। लेकिन आप अगर ये रवैया जर्नली अपना लें कि जो भी आपके फैमिली में या उसके साथ शफकत का रवैया रखें, तो ये इज्तमाइयत हो गई। अब सारों को आपने अपना बच्चा मान के सबको खाना थोड़े ही खिलाना है, दूध थोड़े ही पिलाना है, इज्तमाइयत का फर्क समझ आ गया? देखे, हमारे एटीट्यूड में इनफरादियत नहीं होनी चाहिए, अपने लिए सिर्फ मेरे लिए मेरे लिए मेरा ये मेरा मेरा ये नहीं करना। जहन में वसत पैदा हो जाए कि सबके लिए। और दूसरा है कि खुशी, जब बंदे को कोई चीज अच्छी लगती है तो वो क्या करता है? खुशी फील करता है ना। मैंने आपको शैतनत का डायग्नोसिस क्या अर्थ किया था, उसकी पहचान क्या थी? बुरा लगना। अब बुरा लगना क्या है? शैतनत है। तो अच्छा लगना क्या हुआ? रहमानियत हुई। याद रखें, खुशी का हजूर मुर्शिदे करीम ने जो तर्जमा किया है, जो बात वाजे की, उन्होंने कहा कि खुशी अल्लाह की कुर्बत का दूसरा नाम है। जब आप खुश हैं तो आप अल्लाह के करीब हैं। वाजे हो गई बात एक जुमले में? देखें, मुर्शिद ने हमें इतना बड़ा राज बता दिया कि अगर आप खुश हैं तो आप अल्लाह के करीब हैं। आप अल्लाह के क्या हैं? करीब हैं। जितना आप अल्लाह के करीब महसूस करते हैं उतने खुश होते हैं। गौर करके देखें, हम लोगों ने अल्लाह को एक रिचुअलाइज फॉर्म ऑफ वर्शिपिंग के वजह से अपने से दूर किया हुआ है कि वो एक खास अमल करूंगा, मेरी शलवार टखनों से ऊंची होगी, मेरे सर पे दुपट्टा होगा तो अल्लाह खुश होगा। अरे भाई, आप खुश हैं तो अल्लाह के करीब हैं, बस। अब्बा क्या दुआ देते हैं हर एक को? अल्लाह आपको, अल्लाह आपको खुश रखे। और करें आप, आहा, आपके जहन में था, अल्लाह ने मेरे से कहलवा दिया।
जब भी देखे, जब भी हमने सुना भी है और देखा भी है, अल्लाह आपको खुश रखे।
जी जी, देखें, हम खुद भी एक दूसरे को यही दुआ देते हैं कि अल्लाह खुश रखे, ठीक है? अब मुझे बताइए कि हम खुश रहना ना चाहें, हम अल्लाह को अपने अंदर महसूस करेंगे तो हम खुश होंगे या खफा होंगे?
खुश होंगे सर।
बस ये खुशी का नाम है अल्लाह की कुर्बत। ये इतना बुनियादी सवाल पूछने का शुक्रिया।
शुक्रिया आपका, आपने इतनी खुशी के साथ वजाहत भी तो की ना।
अरे मैं
कर देते हैं कि बस क्या बताएं सर, इसीलिए दिल चाहता है कि क्लियर हो जाए।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
आपका शुक्रिया सर
जी।
थैंक यू सो मच, मेरे सवाल हो गए दोनों
जी। आपका कोई सवाल जी? जी मजीद कोई? ये सवाल ना ही पूछ रही है कि आलम जू क्या है? आलम जू जो है ऐसा है कि अल्लाह रब्बे करीम ने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम का नाम है लोहे महफूज। लोहे महफूज पे हर जर्रे की तमाम हरकत जो मुमकिन हो सकती है, देखे ना एक जर्रा 360 जावियों पे मूव कर सकता है, हाँ या नहीं? 360 जाविये, मसलन देखे ना, ये मैं हाथ को यूं घुमाऊं ऐसे जैसे घड़ी की सुइयां घूम रही हैं, तो ये 300 के 360 जावियों की तस्वीर वहां लोहे महफूज पे मौजूद है। अब जब इसमें इंसानी इरादे शामिल हो गए, यानी मैंने चूज किया कि मैंने हाथ को 90 डिग्री पे हिलाना है, जब मैं हाथ को 90 डिग्री पे हिलाने का इरादा कर रहा हूं तो मेरा इरादा उन तस्वीरों में से चुन रहा है, क्यों न रहा है, इंतखाब कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, वो सिलेक्शन जो मैंने की उसके मुताबिक एक दूसरी लोहे महफूज बन गई जिसको लोहे दोयम कहते हैं, और यही आलम जू है कि हमने क्या सिलेक्ट किया। मिसाल, आपके पास दुनिया का हर दरख्त मौजूद है, आप अपने लॉन में जितने चाहे जो मर्जी दरख्त लगा लें, हाँ या नहीं? अल्लाह रब्बे करीम ने ये किया कि आपको इख्तियार दे दिया कि आप अपने लॉन में 10 दरख्त लगाएं या 15 लगाएं या 5 लगाएं। अब ये जब आपने इंतखाब करके एक लॉन सेट किया, उसमें फूल लगाए, उसमें पौधे लगाए और उसकी शक्ल बनाई, ये आलम जू कहलाएगा। लोहे महफूज पे जो भी आप तस्वुर कर सकते हैं वो सारी शक्लें मान लो ये महफूज पे मौजूद हैं। आपने क्या किया? इंतखाब किया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आपको इरादे का इख्तियार दिया हुआ है। क्योंकि आपको इरादे का इख्तियार दिया है, लिहाजा ये सारी कैफियत, यानी जो कुछ हम सोच रहे हैं, ये हमें दुनिया जैसी दिख रही है, ये सब लोगों का इंतखाब है। अगर किसी बंदे ने इंतखाब किया कि मैंने गरीब आदमी रहना है, तो ये उसका इंतखाब है। अगर वो मेहनत करके, यानी अपने जहन में अमीरी का इंतखाब कर ले तो वो अमीर हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक जुमला और सुन रखे, हजूर कलंदर बाब औलिया का जुमला है कि भाई सारे अमीर तो होना चाहते हैं, उस्मान गनी कोई नहीं बनना चाहता। गौर करें, यानी लोहे महफूज जो है उसमें तमाम बातें हर एक के लिए दस्तयाब हैं, मौजूद हैं। आपने इरादा क्या किया? ये जो कहते हैं जी मैंने आपकी लोहे महफूज पढ़ी वहां पे ये चीज नहीं है, यानी कि असल में वो लोहे द्वयम पढ़ रहे होते हैं, वो आलम जू का जो तमस्सुल है उसको पढ़ रहे हैं कि अल्लाह के निजाम में से इसने क्या चुना हुआ है वहां पे। वो ये बात हजूर कलंदर बाबौलिया ने वाजे की कि भाई ये इंतखाब तुम्हारा है, तुम अपने जहन को कितना खोलते हो, क्या बनना चाहते हो, तुम अल्लाह वाला बनना चाहते हो, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया। आप कहते हैं जी नहीं मैं दुनिया वाला बनना चाहता हूं, अल्लाह कहता है बिस्मिल्ला, आप नवाज शरीफ बन जाओ, जरदारी बन जाओ। अब उन्होंने भी तो इंतखाब किया हुआ है ना, अब उसका कोई भी फकीर उसे देखता है तो वो क्या कहता है, उसे पता है कि इसने तो अल्लाह को तो चूज ही नहीं किया, तो वो कहता है तुम्हारे किस्मत में अल्लाह है ही नहीं, और करें। वो ये कभी नहीं कहता, फकीर जो होता है वो कभी नहीं कहता। मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ। नवाज शरीफ एक दफा हजूर मुर्शिद करीम से मिले और कहने लगे जी आप मेरे लिए दुआ करें। हजूर मुर्शिद करीम ने जवाब में कहा भाई आपके लिए तो सारे ही दुआ करते हैं। गौर करें जरा जुमले, क्या कहा, कैसे खूबसूरती से सलीके से, ठीक है, ये नहीं कहा कि वाकई मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, कहा जी आपके लिए तो सभी दुआ करते हैं, यानी उनके हवारी जो हैं वो तो उसी के लिए दुआएं करते हैं ना। इतना कह के पहलू बचा गए। देखे ना फकीर जो है वो दुआ क्या देगा, क्योंकि तुम्हें खुश रहो, यानी तुम्हें अल्लाह की कुर्बत महसूस होती रहे। फकीर के जहन में अल्लाह के सिवा तो होता ही कुछ नहीं है, हाँ या नहीं? तो बात पल्ले पड़ी,
पड़ रही है सर। बहुत ही आला सर।
बस ये
इंतखाब की बात है सर, ये बातें हो रही
हैं जी। आलम में जू जो है ये लोहे दोयम कहलाती है सूफिया की जबान में, इसी लोहे दोयम को आलम में जू कहते हैं। ये जो कुछ हमारी चॉइसेस हैं, अब आप मेरे घर आए तो ये देखेंगे घर जो है ये मेरी चॉइस है, अल्लाह ने मैं जो भी डिजाइन सोचता
वो बन जाता,
वही बनता। लोहे महफूज पे तमाम शक्लें महफूज है। दुनिया में सिर्फ वो कुछ मौजूद हो सकता है जो आलम में यानी कि लोहे महफूज पे है, उसके बाद आपने क्या चूज किया। अब हजूर मुर्शिद करीम ने मुझे हुक्म दिया यहाँ घर बनाओ, यहाँ प्लॉट था खाली, जब मेरे इरादे मुर्शिद के इरादे के ताबे हो गए या मेरे इरादे को मुर्शिद करीम के इरादे की सपोर्ट मिली, क्या हुआ, ये मजहर बन गया, एक स्क्रीन पे एक चीज का डिस्प्ले हो गया। अब वो स्क्रीन का डिस्प्ले देखकर कोई बंदा मेरे जहन को देख रहा है, कोई बंदा,
अच्छा अगर जिसका घर बेहतर चीज है तो इसका मतलब है उसका जहन बेहतर चीज है।
बिल्कुल, अगर कोई बंदा जिसका जहन घर बेतरतीब है तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका जहन बिखरा हुआ है, उसको तवज्जो देने की जरूरत है। जी जनाब, वालेकुम अस्सलाम।
ये जो सूरह आल इमरान की आयत में पता क्या आगे करना कह रहा है, वैसे गुजर जाते हैं सर।
नहीं सुनाई दिया, माफी चाहता हूँ, जरा दोबारा फरमा दीजिए।
हेलो,
मैंने कहा दोबारा फरमा दीजिए, नहीं सुन पाया
सर। ये जो सूरह आल इमरान के में जी सर, मुहकमात और मुतशाबिहात, सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे आपकी?
जी जरूर जरूर। मुहकमात, मुहकम यानी कि जिसमें हुक्म हो, हुक्म का मतलब है फिरासत की बात, फैसला कुन बात, दो टोक बात, उसको मुहकमात कहते हैं। यानी जैसे लिमा यकुलूना माला ताफालून, इसमें कोई बात दूसरी है, मत कहो वो जो तुम करते नहीं, तो ये ऐसी आयत को मुहकमात कहेंगे, यानी ये खरी बात है। ठीक है, लेकिन मुतशाबिह का मतलब है तशबीह देकर बात करना। मसलन जैसे कहा कि वल लैले सखर लकुमुल लैलु वन नहार व शम्सु वल कमरु वन नजूम मुसखरात बे अम्रही। अब ये क्या है, ये मुतशाबिह आ गया, इसमें तशबीह देकर बात की गई है। क्या तशबीह दी गई है, इसमें तशबीह दी गई है कि भाई तुम्हारे लिए दिन और रात के हवास को मुसखर कर दिया, तुम्हें कंट्रोल दे दिया। अब कहा तो ये गया, अब कहा कि भाई तुम रूहे आजम, रूहे इंसानी और रूहे हैवानी जो है उनके तहत काम कर सकते हो। सखर लकुमुल लैलो वन नहार व शम्सो वल कमरो वन नजूम मुसखराते बे अम्रे ही, तुम्हारे कामों के लिए तुम इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब कहा तो ये गया, लेकिन वहां पे लफ्ज है, अब आप सूरज चांद सितारों में खो जाएं तो खोते ही हो गए ना, मतलब है कि क्या हो गया। खोने वाले को क्या कहेंगे कि ये खो गया। तो मुतशाबिहात और मुहकमात का फर्क समझ आ गया। ज्यादा ही वजाहत होगी, माफी चाहता हूँ जी। इरशाद
सर, ये बातें मेरे मुराद की पेज नंबर 303, इसमें अपन ने फरमाया था अपने अकायद और अकायद और पैरवी का तजिया किया था सर। ये एक इसमें पूछ रहे थे, अगर एक इंसान अपने आगे क्या चीज ऐसी रखे जिससे तजिया कर सके, खासतौर पर अपने अकायद की और पैरवियों की जो अंतर है, तो आगे होना क्या चाहिए उनके पास जिससे वो एनालाइज कर सके?
ये होना क्या चाहिए, ये तो बड़ा सवाल है, ये इसका तो खैर अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बात ये है कि ये होना क्या चाहिए को समझने के लिए आपको क्या दरकार है, अपनी हेडलाइट ऑन करनी पड़ेगी। हेडलाइट यानी कि विजन, यानी कि आगे तक देखना सीखें। अगर आप आगे नहीं देख सकते तो आपको झाड़ झंकार या पत्थरों का क्या अंदाजा होगा। तजिये का मतलब ये है कि आप एनालाइज करें कि ये बात अल्लाह के नॉर्म्स के मुताबिक है या नहीं, अल्लाह के नॉर्म्स के मुताबिक है या नहीं, अल्लाह के नॉर्म्स के मुताबिक है या नहीं, ये है तजिया। यानी आप कंपैरेटिव करते हैं कि मैं जो बात समझ रही हूं क्या ये बात अल्लाह के मुताबिक है। आपका अकीदा है, उस अकीदे का आप तजिया करते हैं, तो आप जब उसको अपनी गिरहें जो हैं लगी हुई, गिरा गिरा गिरा, जब तक ये गिरा नहीं खुलेगी आपको क्या पता चलेगा कि अंदर क्या है। मसलन जैसे हम रोजा रखते हैं, अब हमारे जहन में अकीदे बैठे हुए हैं कि नमाज अजान के साथ ही खाना बंद कर दो और अजान होते ही खाना शुरू कर दो, ये हमारा रोजा है। और इतना खाओ कि जनाब सहरी में उसके बाद आपसे उठ के नमाज पढ़ने की सकत ना रहे, और अफ्तारी में इतना नोश करो कि क्योंकि आखिर सारा दिन आप भूखे रहे हैं, हैं? आपने अल्लाह पे इतना बड़ा एहसान किया है, आपका बनता है कि आप उस पे टूट पड़े दस्तरखान पे, और उसके बाद यहाँ पे पता चले जब खा के फारग हो तो पता चले कि युद्ध हुआ है। ऐसी कैफियत होती है या नहीं? दस्तरखान का वो आलम याद करें जब अफ्तार के बाद पेट जो है वो इतने सूजे होते हैं, अचार चटनियों से लेकर खाने मुर्गन खाने के बाद आप कहते हैं कि अब मैं नमाज कैसे पढूं। अब ये है अकीदा, ठीक है। अब ये गिरा लगी हुई है, आप कहते हैं यही रोज़ है। जब आप इसका तजिया करते हैं तो आप गौर करेंगे कि यार ये क्या बात हुई, इसे अल्लाह कैसे मिला। सवाल आया, आपने उस सवाल की रोशनी में अपने इस अकीदे का जायजा लिया, पता चला कि भी सारा दिन भूखा रहने में हिकमत क्या थी। वो करते कराते आपने इधर से सुना, उधर से पूछा, इधर से तहकीक की, कुछ रिसर्च की, कुछ खुद गौर किया, आपकी समझ में ये बात आई कि भाई ये तो साल्ट एंड शुगर की मिकदारों को कंट्रोल करने का निजाम है। अब जब ये आपके फहम में आ गई बात कि ये तो साल्ट एंड शुगर को कंट्रोल करना है, तो क्या करेंगे आप, अफ्तार कैसे करेंगे भाई? ज्यादा से ज्यादा एक गिलास पानी पी लेंगे, दो चार खजूरें खा लेंगे, थोड़ा सा फल खा लेंगे, कहेंगे थैंक यू वेरी मच, बस दिस इज इट। अब वो दस्तरखान पे युद्ध का सामान ही रहेगा। ठीक हो गया ना भैया? आपको पता चल गया कि भाई मुझे असल राज पता चलने की बात है ना, तो आपने अपने अकीदे को जब विजिट किया तो अब आप वो हबड़ दबड़ नहीं मचाएंगे। इसी तरह जब आपके जहन में आएगा कि भाई हम किन बातों को बुरा जानते, ये बुरा जानना क्या था? शैतनत। न्यूट्रल माइंड क्या होता है? कि जिसमें ये ना अच्छा देखता है ना बुरा, अच्छा लगना शुरू हो जाए तो आप अल्लाह के करीब हो गए, लो फार्मूला बन गया। इसीलिए बात होता है, लोग कहते हैं तुम बात कम करते हो, बात दांत ज्यादा निकालते हो। मैंने कहा मेरे वैसे ही निकल गए। हाँ नहीं वो तो देखें, बात ये है, जी जी सही देखें, असल में बात बड़ी सिंपल है। हमें मुआशरती कदरों का पूरा एहसास करते हुए उसका एहतराम करना, अपने अंदर में इनर में आजाद रहना। ये बात हजूर कलंदर बाबा वालिया ने मकतूबे ग्रामी में वाशगाफ बताई है, मुआशरे की रस्सी से बंधे हुए। अब लोगों के साथ जो चीज आपको अच्छी लगती है वो प्राइवेसी में अच्छी लग रही है तो उसे प्राइवेट ही रखें, उसको लोगों के सामने अगर देखें ना कि जो चीज आपको अच्छी लग रही है वो फर्ज करें कि मुआशरे को अच्छी नहीं लग रही। मसलन जैसे कि मेरा हंसना लोगों को नागवार गुजर जाता है तो मैं क्या करता हूँ, अपनी हंसी को अपने तक ही रखता हूँ, बाद में भले मैं कह कह लगाऊ। ठीक हो गया ना?
जी सर, सही हो गया सर। ये बहुत सारी जो हम लोगों के रिचुअल्स बने हुए सर, इस लिहाज से भी ये बात की थी कि तजिया सर कैसे करें कि जो जो चीजें
मैंने अर्ज किया ना कि तरीका बता दिया कि विजन बढ़ा करें, हेडलाइट्स ऑन करें। क्या तजिए का मतलब है? गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं, हेडलाइट नहीं है ऑन, हैं आप सफर कर सकेंगे रात में? भाई जहालत के अंधेरे कैसे दूर करेंगे, हेडलाइट ऑन करेंगे ना
जी। बिल्कुल।
अब वो हेड 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 लाइट गौर करें इस लफ्ज में भी, दिमाग की बत्ती जलेगी तो चीजें दिखेंगी तो फिर वाजी हो जाएगा, वरना आप अपने अंधेरों में भटकते रहे।
सही हो गया सर, सही हो गया सर। अगर इसी चीज को हम खिदमत में ले लें, मखलूक के खुदा की खिदमत में, अब कहीं हम देखें कि जिस तरह की सिचुएशन है, तो उसको ये बात समझाने के लिए फिर कौन सा तरीका फिर अपनाया जाए?
पहली बात तो ये कि खिदमत कहते किसे,
सपोर्ट करना ग्रोथ में।
देखें, खिदमत आप और मैं नहीं कर सकते।
ओके सर।
खिदमत अल्लाह कर रहा है, या जो बंदा आपकी बात तस्लीम करता है वो कर रहा है अपनी खिदमत। मखलूक खुदा की खिदमत का मतलब है आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, आप उनको हर्ट नहीं कर रहे, आप उनके लिए कोई आसानी कोई सहूलत पैदा कर रहे हैं, ये है खिदमत। ठीक हो गया। अब आ गई बात कि दूसरों को जबरदस्ती करें तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो खिदमत नहीं कहलाएगी। आप कहें कि भाई जबरदस्ती लोगों को मैं खाना खिलाऊं, अगला कहेगा इसको पता नहीं क्या मसला है। भाई मुझे भूख ही नहीं है, मैं क्यों खाऊं?
हाँ।
या उसके जहन में कोई वसवसा है कि भी अगर मैंने इसका दिया खा लिया तो पता नहीं मैं बेहोश हो जाऊंगा और फिर ये पता नहीं क्या करेगा, मुझे लूट लेगा या मेरी वो लूट लेगा। हमारे यहाँ देखे ना, अब ये बने हुए जहनों का खेल है। आपने खिदमत का मतलब लिया किसी को, अब देखे कुरान में बार बार हुक्म है कि तौमुल मसाकीन, गरीबों को खाना खिलाओ। अब शर्त ये नहीं लगाई कि सारों को खाना खिलाओ, और करें यानी जो जरूरतमंद है, जिसको भूख लगी हुई है, जो खाना चाहता है, हाँ या नहीं? दूसरी बात ये कि लाइक राफिदी जबरदस्ती कोई नहीं है। तीसरी बात ये कि लस तो बेमुसैतर। देखें, हमें कुरान की तालीमात को नजर में रखते हुए अगले की दिलचस्पी उभारने की कोशिश हम कर सकते हैं, हम ये फरमाइश कर सकते हैं कि भाई ये दिलचस्पी लो, गौर व फिक्र करो। अब उसका क्या करते हैं, तरीका बता देते हैं कि भी अच्छा भी आराम से बैठ के आंखें बंद करके ये मुराकबा करो। उसके बाद उसके दिमाग में आए, वो मजीद पूछे तो उसकी रहनुमाई कर देंगे। अब उसका वो दिमाग में गिरे लगी हुई है, वो खुली नहीं रही, वो कहता तो हम क्या कहेंगे कि जी ठीक है आप जारी रखें लेकिन अगर वो अपनी गिरा को आइडेंटिफाई कर लेता है, अब तलब जागेगी उसके अंदर या नहीं? अब वो सवाल पूछेगा। अब उसको आप खुल के बता सकते हैं, ये खिदमत का ज़ेल में आ गया। अगर उसका ज़हन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जबरदस्ती बता रहे हैं, तो आप मौलवी हुए? वो नहीं बनो ना जी, वो जो है उन्हीं को रहने दो ना जी।
जी सर, जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह
जी। और कोई सवाल?
ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर।
माय प्लेजर जी। एनी क्वेश्चन जी? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी।
सर सवाल है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप इंसान की तरह सोचते हैं, अल्लाह की तरह नहीं, अल्लाह का बंदा वो है जो अल्लाह की तख्लीक जायजा ले। तो सर इसकी तरह
ये सारी गुफ्तगु मेरा ख्याल है इसी की वजाहत थी। देखिए, एक बंदा अपनी तरह सोचता है, मखलूक बन के सोचना हम पे वाजिब और फर्ज है, हमें अल्लाह की तर्जों को समझना है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वाजह हो जाएगी बात। हजरत मूसा के किस्से में दो किरदार हमें नजर आते हैं, एक फिरौन का और एक मूसा का। फिरौन कहता है मुझे अपनी सलाहियतों का पता है, उसने अपनी सलाहियतों को डेवलप किया है, और वो कहता है मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं, अवतार हूं, मैं अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव हूं। अल्लाह भी तो यही कह रहे हैं, नहीं जाए लो फिर लड़ते खलीफा। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, इन्नी रबों को मोलाला। यहां से क्या गलत हो गया कि वो अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को अपनी सलाहियतें मान रहे हैं। अल्लाह क्या कहता है कि भाई जाके उसको समझाओ। अब मूसा आके उसे क्या कहते हैं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं, रसूल हूं, तुम उसकी मानो, अपनी ना करो। हाँ या नहीं? अब फर्क देखें कि दोनों अल्लाह ही के भेजे हुए। अब वो खुद को अल्लाह का अवतार मान रहा है लेकिन कर अपनी राय। मूसा भी कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं, तुम उसकी मानो। ये इतना सा फर्क है कि मैं अल्लाह को समझने के बाद अपनी कर रहा हूं या उसकी मान रहा हूं। यही बात हजरत ईसा ने फरमाई कि अल्लाह की तर्जों में सोचना सीखो और बंदे बन के जिंदगी गुजारो। लेकिन अगर बंदे को ये एहसास हो जाए कि मैं, मेरे अंदर अल्लाह है, तो वो अल्लाह तो नहीं हो गया ना। उसको ये फर्क रखना है कि मैं मखलूक हूं, उसको ये फर्क रखना है कि मैं खालिक नहीं हो सकता, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह मुझे इस्तेमाल करेगा अपने किसी मकसद के लिए, मुझे अपने मकासद को नहीं पूरा करना, मुझे अल्लाह के पर्पस को सर्व करना है। फर्क समझ आ रहा है? एंगल, एंगल, वो जो तर्ज़े फिक्र का जाविया है वो ये होना चाहिए कि मेरा अल्लाह से एक ताल्लुक है, एक रब्त है, लिहाजा मुझे वो करना है जो अल्लाह चाहता है। जहां आपके अंदर खनास आ गया, शैतान ने पर मार दिया, वहां कहेंगे आपके मैं, तो फिर आप छुरी तो फिरेगी जब आप मैं कहें। वाजे हो गई बात या नहीं?
जी सर।
मतलब सिर्फ जाविया नजर का फर्क है। हमें अपना जाविया नजर इस तरह डर रखना है कि मैं जो भी करूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अल्लाह चाहता है कि मैं ये करूं। अगर मैं अपना जहन खोल रहा हूं तो जहन में क्या है, अल्लाह ने क्या सलाहियत आपके अंदर फूंकी है? मैंने ये बात वाजे कही, सूरह अल हाकिम में पढ़े जरा, हकीकत क्या है? अल्लाह का जो निजाम फिक्र है, अल्लाह के तसव्वुरात जो हैं, हमें उनको समझना है, और अल्लाह ने ये सलाहियत हमें दी है कि हम भी इमेजिन कर सकते हैं। हाँ या नहीं? ठीक हो गया? इरशाद
वाला मोहन रब्बी ताजा सरल अर्दी मैंने काफी ना तैयार है इन्ना का इन तजर हम ये दिल्लू इबादत का बदाय दे ये ले तू इंदा फाजन कब पारा ओ कहा नूने मेरे रब ना तू छोड़ जमीन पर काफर में से कोई बसने वाला, बेशक तू अगर छोड़ देगा इन्हें तो बचका देंगे तेरे बंदों को, उन्ना को जन्म देंगे मगर फाजिर को सब मंग। तो सर इन्होंने क्या उनके जेंस तक का मुशाहिदा हो गया था कि उनमें से कोई भी वो अल्लाह का बंदा नहीं होगा, सब फाजिर होंगे?
जाहिर है, तभी तो उन्होंने ये कहा। देखे ना, ये अल्लाह रिपोर्ट कर रहा है कि नूह ने ये कहा, गौर करें, यानी कि नूह का विजन इतना था कि उन्होंने ये नोट कर लिया कि ये बंदे जो हैं अपनी ही करे जा रहे हैं, अल्लाह के निजाम को समझने पे राजी ही नहीं, अल्लाह के निजाम के मुताबिक नहीं चलना चाहते, ये एक दूसरे के लिए एजियत का बायस बने हुए हैं। اصل فساد یہ ہے. تو اللہ رب کریم کالا نو کالا کہہ کے کہ اس نے کہا, یعنی کہ بتا رہے ہیں کہ حضرت نو کی تھنکنگ کا پیٹرن یہ تھا, اس کے ویژن کا یہ عالم تھا کہ وہ جانتا تھا کہ کیا لوگ غلط کر رہے ہیں, اور ساتھ میں اللہ نے اس نے انہوں نے کیلکولیٹ کر لیا ہے. اب دیکھیں نا, جیسے اب کراچی کا جو حال ہے, آپ اور میں کیا کیلکولیٹ کر رہے ہیں, یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا جب تک کہ اس کو خراب کرنے والے ختم نہیں ہوں گے. ہاں یا نہیں؟ جب تک وہ اسے خراب کیے ہوئے ہیں, پورے پاکستان کا نظام کیا ہے, ہم دنیا میں اس وقت بھیک منگے ہیں. تو یہ نظام, اب ظاہر ہے ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ کرنے والے, اس کو خراب کرنے والے ختم نہیں ہوں گے, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو خراب کرنے والے ہیں میں ان کو کیسے ختم کروں, کیونکہ ان کے ماننے والے زیادہ ہیں. یہ الہی قانون ہے, چونکہ عوام اس کو قبول کیے ہوئے لہذا وہ نافذ رہیں گے. لہذا کیا ہوا, الٹیمیٹلی ہر چیز کا انجام کیا, کلمینیشن پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ وہ آخر گرو کر کے درخت جو ہے اپنی عمر پوری کرتا ہے. اسی طرح ہر قوم بھی اپنی عمر پوری کرتی ہے. اب وہ صحت مندی سے پوری کرتی ہے یا کیڑا لگاؤ گھن لگاؤ پھر پوری کرے, دونوں صورتوں میں اس نے اپنی عمر پوری کرنی ہے. ایک اذیت کا ریکارڈ بنے گا, ایک خوشحالی کا ریکارڈ بنے گا. کراچی والوں کی ساروں کی عمریں تعین ہیں, وہ انہوں نے گزر ہی جانی ہے, لیکن وہ رو پیٹ کے گزارا کر کے جائیں گے یا خوشحالی میں جائیں گے, یہ فیصلے لوگوں نے کرنے. اللہ کے تو نظام میں دونوں چیزیں وافر ہیں, فراوانی سے بتا دی گئی. اسی لیے انہوں نے اثر نو ایک آبادی کا نظام شروع کیا کہ وہ ان کے کہنے میں ہیں, لہذا وہ ایک اپنا معاشرہ بنائیں گے. بعد میں وہ معاشرہ پھر چالاک لوگوں کے ہاتھ چڑھ کے اس کا ستیہ ناس ہو گیا. انہوں نے ریچوالائز کر دیا ہر چیز کو, ستیہ ناس کر دیا. لہذا دیکھ لیجئے نا کہ آپ کے قرآن کا ترجمہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بن ناس تک, کیا سب ستیہ ناس نہیں ہوا ہوا؟ تو بات واضح ہو گئی. چلے خوش رہیے. ارشاد, واہ جی واہ, لطف آ گیا قسم سے یہ سوال سن کے. سب سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ ہی مخلص ہونا. مخلص کہتے ہیں اس کا مادہ کیا, خالص ہونا, یعنی آپ جو بھی کام کریں اس لیے کریں کہ وہ کرنا ضروری ہے اور اس کو اچھی طرح کریں. مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آرام آرام سے چبا چبا کے کھائیں, یہ خلوص نہیں ہے, خالص ہو گئے. اب آپ پانی پی رہے ہیں, اب پانی کو آرام آرام سے پئیں, آرام آرام سے پئیں, آرام آرام سے چسک چسک کے چسک چسک کے, کم از کم ایک گلاس ایک سے ڈیڑھ منٹ میں پئیں. اب سانس لے رہے ہیں تو سانس تو پورا لینا ہے. یہ تین کام ہم کر نہیں رہے اور اپنے ساتھ مخلص ہونا چاہتے ہیں. کیا خلوص ہے ہمارا اپنے ساتھ؟ ہمیں جلدی پڑی ہوئی ہے سانس لینے کی, ہمیں جلدی پڑی ہوئی ہے شارٹ کٹ کھیلنے کی. فوراً بس جلدی سے سوچ لو, جلدی سے یہ کر لو, جلدی سے ہو جائے, دعا کر دو بس جب میری بخشش ہو جائے. ارے اللہ کے بندے, تو دعا کر کے بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کام اچھے کرے گا تو بخشش ہوگی نا. میری یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ دیکھیں, ہمیں اپنے ساتھ مخلص ہونے کا مطلب ہے میں اپنی ڈیولپمنٹ کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور خالص ہو کے خود کو ڈیولپ کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں, اپنے ذہن سے کام لینا سیکھوں. یہ سب خلوص میں آ گیا. ہم لوگوں کے ساتھ مخلص ہونے کی باتیں کرتے ہیں اور اس کا بھی بڑا محدود مفہوم لیتے ہیں. نہیں دیکھیں, من عرف نفسہ کا پہلا سبق یہ کہ مجھے اپنے ساتھ مخلص ہونا ہے, میں تب جا کے کہیں دوسروں کے ساتھ مخلص ہو سکوں گا. اگر میں اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوں, میں اپنی ڈیولپمنٹ ٹھیک نہیں کر رہا, میں اپنا صحت کا خیال نہیں رکھ رہا, میں کسی کی صحت کا کیا خیال رکھوں گا. دیکھیں نا, میں نے جب اپنی صحت کے بارے میں بیمار ہوا, ساری بات ہوئی, مرشد کریم نے ڈانٹا مجھے, شاہین نے کہہ دیا کہ ابا مقصود بیمار ہے, ابا نے کہا اسے کو آرام آرام سے تو کھانا کھائے, اب کب 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 کر کے کھاتا ہے اور کریں. بھائی میں انصاف نہیں کر رہا تھا, میرا دھیان ادھر ادھر بھٹکا رہتا تھا, کھاتے وقت میں منہ میں نوالا ڈالتا تھا, دو دفعہ تین دفعہ چباتا تھا, غب کر کے اسے نکل لیتا تھا. جب سے مرشد کریم کی اس بات پہ عمل کیا ہے, یہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا یا شاید نہیں, کئی لوگوں کو میری آواز میں نکاہت آ گئی تھی, بڑی مشکل سے بولتا تھا. لیکن کیا, جب حضور مرشد کریم نے متوجہ کیا تو میں نے دیکھا نا, چھوٹی سی بات کا پورا تجزیہ کیا, اس کو انالائز کیا کہ یار میں سانس پورا نہیں لے رہا, میں پانی آرام سے نہیں پی رہا, میں کھانا ٹھیک طرح نہیں کھا رہا, میری صحت خراب نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. تو میرے خلوص نے مجھے مجبور کیا کہ میں انسان کا بچہ بن کے کھانا کھاؤں. ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں نا, آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں, خلوص یہ ہے کہ آپ جب تک اس کی صحیح سمجھ نہ آ جائے اس کی جان نہ چھوڑیں. ہاں
ٹھیک ہے,
یہ فالتو میں ہاں ایک وہ بتا دیا. جی جناب, اور کوئی سوال؟
انسان کی سوچ انسان کے ذہن پر کس طرح اثر انداز
ہوتی ہے؟ ہر طرح سے اثر انداز ہوتی ہے, سوچ ہی تو ہے. میں کیا ہوں؟ میں اپنی سوچوں کا اظہار ہوں. آپ کیا ہیں؟ آپ اپنی سوچوں کا مظہر ہیں. اور کریں, میں وہی کچھ تو ہوں جو میں سوچتا ہوں, جو میں سمجھتا ہوں وہی کچھ تو میں ہوں. تو سارا کچھ ہماری سوچیں ہی تو ہیں, ہمیں اپنی سوچیں ہی تو ٹھیک کرنی ہے. کافی ہو گیا جی؟ جی شادی, آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟
جی جی سر, سر یہ جو حضرت نوح والا قصہ ہے جس میں انہیں ختم کرنے کے لیے وہ دعا کر دی, تو یہ کیا ان کی جینز میں اتر گئی تھی یہ ساری عمر میں کہ وہ جینز کا ختم ہونا ضروری تھا؟
آپ نے بڑی قیمتی بات کہہ دی, بالکل جی ہاں, کیونکہ حضرت نوح نے دیکھ لیا کہ ان کی جینز میں ایک بات اتر گئی ہے, اور یہ کسی بھی طور سدھرنے والے نہیں ہیں, ان کی آئندہ نسلیں بھی نہیں سدھریں گی.
جی سر,
یہی تو کیلکولیشن اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اتنا ویژن تھا ان کا. اب دیکھیں آپ کا ذہن ماشاءاللہ یہاں تک پہنچ گیا, یہ جینز کی بات میں نے حضرت ابراہیم کے حوالے سے بتائی تھی نا. بالکل 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 درست فرمایا آپ نے. ہاں جی, نہیں نہیں روحیں نہیں ڈیلیٹ ہوئی, ان کے روحیں تو آتی رہی. جب روح دنیا میں آتی ہے تو آگے اس کے اماں ابا کے جینز اس روح کو منتقل ہوتے ہیں, یا وہ جین جو پہلا مطلب سپرم اور اووم جو مل کر زائگوٹ بناتے ہیں, وہ یہ معاشرتی شعور کا جینز ہے نا. اب چونکہ وہی چلنا ہے, तो वो अंबिया कराम की तर्जें अपनाने वाले जीन्स कहाँ गए? वो भी हमारे अंदर हैं। हजरत इब्राहिम ने कहां से एक्सप्लोर कर लिए? जीन्स तो उनके अंदर थे। सिर्फ ये था कि उन्होंने ये असेस कर लिया कि अब इनके नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है कि ये अपने अंदर के पॉजिटिव जीन्स को गायब कर चुके हैं। अब वाजे हो गई बात? ठीक हो गया जी? माशाल्लाह, चले खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।
Thank you.